नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की भूल भुलैया में उतर रहे हैं
जो जो सिर्फ एक कहानी नहीं है
बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल है, कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं कॉलीन हूवर के उपन्यास वेरिटी की।
अब कॉलीन हूवर का नाम सुनते ही मतलब लोगों के दिमाग में अक्सर इमोशनल या रोमांटिक कहानियां आती हैं।
सही कहा, लेकिन इस किताब के साथ तो उन्होंने अपने पाठकों को एक बहुत ही बहुत अंधेरी और बेचैन कर देने वाली दुनिया में धकेल दिया।
बिल्कुल, और ये किताब सिर्फ बेस्ट सेलर नहीं बनी, ये तो एक तरह की
सांस्कृतिक घटना बन गई।
हाँ, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर हैशटैग वेरिटी का अंत क्या है, इस पर तो आज भी बहस होती है।
और लोग सचमुच दो टीमों में बटे हुए हैं, टीम मैन्यूस्क्रिप्ट और टीम लेटर।
और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है
कि ये आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती बल्कि आपसे सवाल करती है, आपको जज और जूरी मतलब दोनों बना देती है।
तो चलिए इस कहानी की नींव से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब और दर्दनाक माहौल में होती है।
कहानी की मुख्य पात्र है लोवेन एशली।
जी, एक लेखिका जो अपनी माँ की मौत के शोक में है और मतलब आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान चल रही है।
और एक दिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर उसकी आंखों के ठीक सामने एक भयानक हादसा होता है
और उसी उथल पुथल के बीच वो एक आकर्षक अजनबी जेरेमी क्रॉफर्ड से टकराती है।
ये मुलाकात पहली नजर में एक आम रोमांटिक कहानी की शुरुआत लगती है ना?
बिल्कुल, लेकिन असल में ये एक बहुत ही भयावह जाल का पहला धागा है।
हाँ, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। बाद में पता चलता है कि जेरेमी की पत्नी वेरिटी क्रॉफर्ड खुद एक मशहूर लेखिका है
जो एक रहस्यमयी दुर्घटना के बाद कोमा जैसी हालत में है, और जेरेमी लोवेन को एक ऐसा प्रस्ताव देता है जिसे वो मना ही नहीं कर सकती।
वेरिटी की बेस्ट सेलिंग सीरीज की जो अधूरी किताबें हैं उन्हें पूरा करने का काम,
और इसके लिए उसे वर्मोंट में उनके सुनसान बड़े से घर में रहना होगा।
आपको नहीं लगता कि ये क्लासिक गॉथिक कहानी का सेटअप है?
हाँ बिल्कुल, एक अकेली परेशान लड़की, एक बड़ा रहस्यमय घर
और एक आकर्षक लेकिन दुखी आदमी।
माहौल शुरू से ही तनाव और रहस्यों से भरा हुआ है। उस घर में लोवेन है, जेरेमी है, उनका छोटा बेटा क्रू है,
और बिस्तर पर बेसुध पड़ी वेरिटी है।
जी, और उस घर की दीवारों में जैसे दुख बसा हुआ है क्योंकि परिवार पहले ही अपनी दो जुड़वा बेटियों को अलग अलग हादसों में खो चुका है।
तो लोवेन का काम है वेरिटी के नोट्स खंगालना ताकि वो उसकी तरह लिख सके, लेकिन उसे कुछ ऐसा मिलता है जो कहानी का रुख ही मोड़ देता है,
और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है।
उसे वेरिटी के दफ्तर में एक छिपी हुई आत्मकथा की पांडुलिपि मिलती है जिसका शीर्षक है सो बी इट।
ये सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है, ये हूवर का सबसे बड़ा हथियार है कह सकते हैं।
ये जो कहानी के अंदर कहानी वाली तकनीक है ना?
जी,
यहाँ उसका इस्तेमाल पाठक को गुमराह करने, उसे एक मनोवैज्ञानिक खेल में खींचने के लिए किया गया है।
और क्या खेले हैं? ये पांडुलिपि पढ़ते ही उपन्यास दो हिस्सों में बट जाता है।
एक तरफ लोवेन का वर्तमान है जो उस उदास घर में जेरेमी के करीब आ रही है,
और दूसरी तरफ वेरिटी का लिखा हुआ भयावह अतीत।
लोवेन जैसे जैसे उस आत्मकथा को पढ़ती है वो वेरिटी के मन की गहराइयों में उतरती जाती है, और वो गहराइयां मतलब बहुत ही घिनौनी है।
वेरिटी उसमें जेरेमी के लिए अपने जुनून को एक पागलपन की हद तक बयान करती है,
लेकिन उसी जुनून के साथ वो अपनी जुड़वा बेटियों चैस्टन और हार्पर के लिए अपनी नफरत को भी बड़ी बेरहमी से लिखती है।
वो उन्हें अपने और जेरेमी के बीच का कांटा मानती थी।
यहाँ हूवर मातृत्व की उस पवित्र छवि को तोड़ रही है जिसे हम हमेशा से देखते आए हैं। एक माँ अपने बच्चों से इतनी नफरत कैसे कर सकती है?
और ये नफरत सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं थी, पांडुलिपि में ऐसे कबूलनामे हैं जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देते हैं।
जैसे
वेरिटी लिखती है कि उसने अपनी एक बेटी को गर्भ में ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन सबसे भयानक खुलासा चेस्टिन की मौत से जुड़ा है,
जिसे दुनिया एक हादसा मानती थी।
हाँ, वेरिटी उसे अपनी साजिश बताती है। वो लिखती है कि उसने जानबूझकर नाव पलट दी और अपनी बेटी का सिर पानी के नीचे दबाए रखा ताकि वो बच ना सके,
और इसकी वजह सिर्फ जलन थी।
बिल्कुल, उसे लगता था कि जेरेमी चेस्टिन को उससे ज्यादा प्यार करता है।
ये वो पॉइंट है जहाँ पाठक के मन में वेरिटी एक राक्षस बन जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमें इस पे यकीन करना चाहिए?
सही सवाल है। क्या एक लेखक जो अपनी कहानियों में खलनायक बनाता है खुद की आत्मकथा में सच लिखेगा,
या वो यहाँ भी एक किरदार गढ़ रही है?
यही सवाल लोवेन को भी परेशान करता है, और इन खुलासों का उस पर बहुत गहरा असर होता है।
एक तरफ वो वेरिटी से डरती है और दूसरी तरफ वो जेरेमी के लिए हमदर्दी और एक तरह का आकर्षण महसूस करने लगती है,
और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, वो उस घर में वेरिटी की जगह लेने लगती है।
वो उसके कपड़े पहनती है, उसके ऑफिस में काम करती है,
उसके बिस्तर में सोती है और जेरेमी के करीब आ जाती है।
यहाँ कहानी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, पहचान का संकट।
मतलब?
क्या लोवेन सच में जेरेमी से प्यार करती है, या वो अनजाने में वेरिटी की लिखी हुई कहानी का एक किरदार बनती जा रही है?
हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो घर, वो माहौल उसे बदल रहा है, वो वेरिटी की छाया बनती जा रही है।
और ये छाया तब और भी डरावनी हो जाती है जब लोवेन को शक होने लगता है
कि वेरिटी शायद उतनी भी बेसुध नहीं है जितना वो दिखाती है।
बिल्कुल, उसे वेरिटी के कमरे से हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि वेरिटी की आंखें उसका पीछा कर रही हैं।
उसे ये डर सताने लगता है कि वेरिटी सब कुछ देख और सुन रही है और बस अपने वक्त का इंतजार कर रही है।
और ये डर तब हकीकत में बदल जाता है जब एक रात वो वेरिटी को सीढ़ियों के ऊपर खड़ा देखती है।
वो पल तो सब कुछ ठहर जाता है।
अब ये सिर्फ शक नहीं है, ये सच्चाई है। वेरिटी नाटक कर रही थी।
और ये जानते ही लोवेन एक ऐसा फैसला लेती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है।
आपको क्या लगता है उसने अगला कदम क्यों उठाया? क्या वो जेरेमी को बचाना चाहती थी या अपनी जगह पक्की करना चाहती थी?
शायद दोनों। उसकी नीयत भी यहाँ पर साफ नहीं है जो इस किरदार को और दिलचस्प बनाता है।
वो करती क्या है?
वो जेरेमी को वेरिटी के पांडुलिपि पढ़ने के लिए दे देती है। वो उसे वो सच दिखाना चाहती है जिसके साथ वेरिटी जी रही थी।
और जेरेमी की प्रतिक्रिया
उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक होती है। अपनी बेटियों के साथ हुए धोखे और अत्याचार की सच्चाई जानकर उसका दुख गुस्से और नफरत में बदल जाता है।
और एक भयानक सीन में वो वेरिटी का गला घोंटकर उसे मार देता है,
ठीक उसी तरह जैसे पांडुलिपि में चैस्टिन की मौत का जिक्र था।
वो खुद उस कहानी का राक्षस बन जाता है जिसे वेरिटी ने लिखा था।
और लोवेन, जो अब तक सिर्फ एक दर्शक थी, इस हत्या को एक दुर्घटना का रूप देने में जेरेमी की मदद करके
एक साथी अपराधी बन जाती है।
हाँ, अब वो दोनों एक ऐसे राज से बंध गए जिसे वो कभी किसी को नहीं बता सकते।
यहाँ आके लगता है कि चलो कहानी खत्म हुई, बुराई का अंत हुआ और अब दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे।
लेकिन कॉलीन हूवर अपने पाठकों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती।
असल में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था।
जी, कई महीने बीत जाते हैं, लोवेन जेरेमी के बच्चे की माँ बनने वाली है और वे उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
तभी लोवेन को वेरिटी के पुराने सामान में छिपा एक पत्र मिलता है।
और सच कहूं, जब मैंने पहली बार ये हिस्सा पढ़ा तो मेरे हाथ से किताब लगभग छूटी गई थी।
जिस सच को हम मान चुके थे, हूवर उसे एक ही झटके में पलट देती हैं।
वो पत्र वेरिटी ने जेरेमी के नाम लिखा था और उसमें घटनाओं का एक बिल्कुल अलग और शायद और भी ज्यादा भयानक सच था।
क्या लिखा था उस पत्र में?
उस पत्र में वेरिटी ने लिखा था कि उसकी आत्मकथा यानी वो पांडुलिपि,
वो एक काल्पनिक लेखन अभ्यास थी।
हाँ,
वो अपनी किताबों के खलनायक के किरदार को समझने के लिए उसके नजरिए से लिखने की कोशिश कर रही थी। एक लेखक का तरीका था अपने किरदार की आत्मा में उतरने का।
तो मतलब चेस्टिन की मौत वाकई एक हादसा थी?
पत्र के मुताबिक हाँ, और उससे भी भयानक बात ये थी कि जेरेमी ने उस पांडुलिपि को पढ़ लिया था और उसे सच मान लिया था,
और उसी गुस्से में उसने वेरिटी को मारने के लिए ही कार दुर्घटना की साजिश रची थी।
वेरिटी का महीनों तक बेसुध पड़े रहना कोई बीमारी नहीं थी,
बल्कि जेरेमी के डर से खुद को बचाने का एक नाटक था।
वो जानती थी कि अगर जेरेमी को पता चला कि वो ठीक है तो वो उसे जान से मार देगा।
अब सोचिए लोवेन की हालत, उसके सामने दो सच हैं।
एक पांडुलिपि का सच जो वेरिटी को एक राक्षस बनाता है,
और दूसरा इस पत्र का सच जो जेरेमी को एक वैशी कातिल साबित करता है।
तो अब असली खलनायक कौन है?
और लोवेन क्या करती है?
वो उस पत्र को नष्ट कर देती है।
वो उस कहानी को जला देती है जो उसके और जेरेमी के भविष्य को बर्बाद कर सकती थी।
वो उस सच को चुनती है जो उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक है।
उसे एक ऐसे पति के साथ रहना ज्यादा आसान लगता है जिसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मारा, बजाय उस पति के जो एक ठंडा कैलकुलेटर कातिल है।
और यही उपन्यास अपने सबसे बड़े विषय पर आता है, सत्य की व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ।
जी,
सच वो नहीं होता जो हुआ है, सच वो कहानी होती है जिसे हम मानना चुनते हैं।
लोवेन ने अपनी कहानी चुन ली,
लेकिन क्या वो कभी उस शक से बाहर आ पाएगी?
किताब का अंत इसी अनिश्चितता पर होता है, पाठक को कभी पता नहीं चलता कि असली सच क्या था।
और यही इस किताब की जीत है, ये आपको कोई जवाब नहीं देती
बल्कि आपके मन में ढेरों सवाल छोड़ जाती है। क्या वेरिटी एक मनोरोगी थी या एक बेमिसाल लेखिका? क्या जेरेमी एक दुखी पति था या एक चालाक कातिल?
और अंत में, क्या लोवेन एक मासूम शिकार थी या एक मौका परस्त जो सच को दफनाकर अपनी जिंदगी बनाती है?
कहानी का हर पात्र एक तरह से अपने सच की कहानी गढ़ रहा है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्य अक्सर एक सुविधाजनक कहानी होती है जिसे हम सुनना और मानना चुनते हैं।
और कभी कभी सबसे भयानक राक्षस वो नहीं होते जो हमें दिखाई देते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्हें हम सच मानकर अपने मन में पाल लेते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।